Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
काम की वैसे भी देखो कामनाएं जो होती हैं, एक तो काम वो है ही जिस शब्द में ये रूढ़ है उसमें तो झगड़े हैं। कितना भी कोई ये सोचता रहे उसमें थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है कि झंझटों से बच गए हैं, लेकिन फिर उससे दुगना होकर तनाव में आते। बाकी जो कामनाएं हैं किसी की, जैसे मेरे मन में कुछ है, मैं किसी से कुछ मांगने गया हूं, तो कामना की ये विशेषता होती कि अगर तो मैं किसी से मांगने गया हूं कुछ और वो मुझे मिल जाए, तो मिलने के बाद तुरंत अगले दिन से प्यार में कमी आ जाती है। जो पहले प्यार था वो कम हो जाता, जिसने दिया उसकी नजर में भी अब मैं पहले जैसा नहीं रहा जैसे पहले था जब तक नहीं लिया था कुछ, और मेरी नजर में भी यह हो गया कि मैं मांगने वाला था उससे मांगा। और धीरे धीरे फिर आदमी अगर नहीं भी दे पाया या मांगने में, मांगते ही प्यार खत्म होता है। अगर मिल जाए तो मैं एक दिन बहुत प्रशंसा करूंगा कि वहां गया था, जाते ही उसने मुझे दे दिया, अमुक ने मना किया था उसने दे दिया, लेकिन अगले दिन से खत्म। और अगर वो पहले दिन ही मना कर दे तो उसी दिन से खत्म। अगर मिल जाए तो धीरे धीरे खत्म होगा, अगर नहीं मिला तो तुरंत खत्म हो गया। तो इसलिए ये काम या कामनाएं संबंधों को तोड़ती ही हैं, ये कभी भी बनने नहीं देती। तो उन्होंने फिर क्रोध से कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से मोह पैदा हुआ और मोह से स्मृति का नाश हुआ, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि के नाश से सब। यहां पर सम्मोह अर्थात पूरी तरह से मोह। मोह का मतलब होता है देखो काम जहां होता है जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम तो नहीं होता लेकिन हम बोलते हैं कि बड़ा प्रेम है, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां क्रोध आता है वहां स्वयं सोच लो वो प्रेम नहीं काम है। जहां प्रेम होगा वहां क्रोध का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध के मन में प्रेम है उसे कभी क्रोध नहीं आएगा, गुरु नानक देव के मन में प्रेम है उन्हें कभी क्रोध नहीं आएगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव के मन में प्रेम है उन्हें कभी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेम। हम जिसे प्रेम समझते हैं और रोज झगड़े में हैं, तो हमें थोड़ा स्वयं पर विचार कर लेना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वस्तुतः ये प्रेम है, क्योंकि प्रेम और क्रोध ये दो चीजें तो कभी हुई नहीं। प्रेम के सामने तो क्रोध तिरोहित हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। कोई क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति भी आया है कभी बुद्ध के सामने तो क्रोध खत्म हुआ है, वो नमस्कार करके ही चला गया। तो जिसे हम काम कहते हैं, प्रेम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो काम का एक काम ही है ऐसा मान। काम से भी बढ़कर एक अधिक जिसको हम और प्यार कहते हैं उसको मोह कहते हैं। ये काम से भी थोड़ा अधिक खतरनाक मोह जो है। मोह स्मृति को नष्ट करेगा। देखो मोह में और काम में आप ऐसे अंतर समझ लो कि काम हमारे किसी उद्देश्य में कोई अड़चन आए तो क्रोध होता है। जिस वस्तु की हमें कामना है, जिस चीज को हम चाह रहे हैं, काम से क्रोध क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हम किसी को चाह रहे हैं, बीच में अड़चन आ गई तो क्रोध पैदा हुआ। अड़चन दूर कर दो, क्रोध नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बड़ा किसी को गुस्सा है किसी बात पर आ रहा, वो काम आप ना करो, बात खत्म हो गई, क्रोध खत्म हो जाए। मोह खत्म नहीं होता, मोह की कोई सीमा नहीं है, ये कहां खत्म होगा? क्योंकि मोह में हम किसी दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहते हैं, किसी से हम सुख भी लेना चाहते हैं लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार उसे ढाल दें, और ये कभी संभव नहीं है। हम कितना भी करते रहें, देखो जिससे भी आपको कहते तो हम उसको भी प्यार ही हैं, जैसे काम को भी प्यार ही कहते हैं, शब्द हमारे पास मोह के लिए भी प्यार का है। लेकिन फिर भी जिनका थोड़ा सत्संग से या शास्त्रों से थोड़ा संबंध है, वो इस बात को ध्यान में रखें कि प्यार शब्द के आते ही आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ध्यान कर लें, गुरु नानक देव का कर लें, ज्ञानेश्वर महाराज का कर लें, इन लोगों में प्यार था और उनका प्यार अंत में भाव में बदल गया, ईश्वर से जा मिले। हम जिसको प्रेम कह रहे थे, प्यार कह रहे थे, वो असल में काम था, इसलिए उसमें से क्रोध पैदा हुआ। और क्रोध तो भावती सम्मोह, जब हमारी वो अड़चन बार बार पड़ती है, दूर नहीं होती, और हम भी उसको जैसे कोई बेटा है कहना नहीं मानता या आपके अनुरूप नहीं चलते, अब आपका जो उसके प्रति प्रेम या मोह वो तो बहुत अधिक हो गया। अब क्रोध तो हट गया, क्रोध इसलिए कि वो बार बार कहने पर भी नहीं मान रहा, बार बार कहने पर जो क्रोध का कारण था उस चीज को हटा दो तो क्रोध हट गया। जब वो बात बीच में हट ही नहीं रही तो वो मोह का रूप धारण कर लेगा। मोह का अर्थ होता है कि पूरी तरह से शास्त्रों में तो काम के लिए आया कि काम पागल बना देता है व्यक्ति को और मोह अंधा बना देता है। पागलपन क्षणिक भी होता है, थोड़ी देर का ठीक भी हो जाता है, अंधापन तो फिर रोशनी को देख ही नहीं सकता, वो कभी फिर लौट के यथार्थ को देख नहीं पाता। मोह में यथार्थ को नहीं देख पाते क्योंकि मोह से स्मृति नाश होगी। थोड़ा इस बात को आप ध्यान में रखें। स्मृति कहते हैं, देखो एक बुद्धि शब्द यहां आया, बुद्धि प्रणश्यति, बुद्धि में तीन शब्द छुपे हुए हैं, जैसे अंतःकरण में हम तीन ले लेते हैं ना, चार को मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण बन गया। तो बुद्धि जिसको हम कहते हैं उसमें समृति, कल्पना और बोध, ये तीन शब्द हैं, इनको मिला के बुद्धि कहते हैं। बोध कहते हैं वस्तुओं को समझने की ताकत, कि कोई किसी ने समझाया तो हमारी समझ में कितना आया। समृद्धि कहते हैं जो हमने समझ लिया और अनुभव में भी आ गया वो फिर याद रहता है, उसको समृद्धि कहते हैं। जो समझ भी लिया और अनुभव में नहीं आया वो याद नहीं रहेगा, वो रट लिया था हमने थोड़ी देर के लिए, जैसे जब दसवीं पास की थी हमने या इंटर पास किया था या बीए में थे तो उस समय बड़े नंबर आए लेकिन आज याद भी नहीं वो सब्जेक्ट क्या था, उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, तो वो थोड़ी देर के लिए रट लिया था, वो समृद्धि में नहीं रहे। लेकिन जानने के बाद जो अनुभव में भी आ गया वो मेरी समृद्धि में, वो मुझे याद है। तो बुद्धि के तीनों ही काम होते हैं, एक हिस्सा उसका समृद्धि कहलाता है जो पिछला स्टोर हाउस नॉलेज का, एक ये है जो नया हम अभी सीख रहे हैं, और एक कल्पना। कल्पना का अर्थ होता है कि जो पहले का जाना हुआ और अब जो देख रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर जीवन के लिए उपयोगी कुछ और बना लेना। उदाहरण दिया हमारे उपनिषदों में, उस उदाहरण को आधुनिक ढंग से कहें तो जैसे आज से कोई 40 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले जब हम लिखते थे तो कलम द्वात ये अलग अलग होते थे, एक पेन होल्डर होता था, एक द्वात होती थी, उसमें स्याही डालते थे, फिर उस स्याही में पानी डालते थे, उसको ठीक से मिलाते थे और इधर उसको लगाना बीच में, फिर उसका लिखना। लेकिन फिर किसी व्यक्ति ने स्याही और पेन को इकट्ठा कर दिया तो उससे पेन बन गए, पार्कर बन गया, वो बन गया। स्याही उसी में ही रहती थी, अलग नहीं रही, लेकिन स्याही फिर भी भरनी पड़ती थी, बीच में ट्यूब थी एक वो था। इसको देखकर फिर किसी ने और आगे कल्पना की तो बाल पेन बना दिया, अब स्याही भी अलग नहीं है, ना स्याही अलग ना उसकी निब भी नहीं है, नहीं तो पहले निब लेनी पड़ती थी, निब अलग से लो, ट्यूब अलग से लो, ये लो। तो ऐसा चलता रहा बहुत समय तक। शहरों में हो सकता है कि ये बहुत पहले से बाल पेन आ गए हों, लेकिन गांव वाओं के जिनकी अनुभव है वहां मुश्किल से भी 15 साल पहले की बात है कि यह बाल पेन के ये सारा इकट्ठा हो गया। ये इसको कल्पना कहते हैं। तो बुद्धि में ये तीनों बातें होती हैं, लेकिन इसका आधार सारे का समृद्धि है, इसलिए समृद्धि के नष्ट होते बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी टिकेगा नहीं, ऐसा ये सिद्धांत है और ये बात ठीक भी। यहां ये जो उन्होंने कहा ना कि उससे क्या होगा सम्मोहन से, मोह का अर्थ ये हुआ कि हम जो जहां से सुख नहीं मिलता वहां सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अपने अनुरूप कि मेरा जैसा मैं चाहता हूं ये वैसा हो जाए। मोह में व्यक्ति, देखो प्रेम में दूसरे का ध्यान रखा जाता है, मोह में अपना ही होता है दूसरे का नहीं। जहां प्रेम होता है वहां हम दूसरे का ध्यान रखते हैं, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अनुरूप हम आचरण करते हैं जिससे वो खुश हो। प्रेम में दूसरे को खुश करने की भावना होती, या ऐसा दान कह लो, प्रेम दान है, देने का नाम, और मोह लेने का नाम है। मोह में हम दूसरे को नहीं समझते, हम अपने को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तेरा बाप हूं तू मेरी बात हूं, अब ये कुछ तरक है तो मैं तेरा बाप, ये कोई तर्क नहीं है, मतलब खाली ये कि मैं तेरा बाप हूं। उपनिषद में बहुत बढ़िया बात है, देखो ये जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष के कोई पौध नहीं होती, पीपल का वृक्ष इनवेरिएबली अनिवार्य रूप से कौवे की बीट से इसका बीट जाता है और कौवे की बीट से पीपल पैदा होता है। इसलिए पीपल दीवारों पर भी होता है, छत पर भी कई जगह हो जाता है। घरों की दीवारों पर प्राणी देखो तो पीपल उगा हुआ। तो अगर कौवे की बीट से पीपल पैदा हो गया और कौवा पीपल का बाप तो बना नहीं, ये कहें कि कौवे ने पीपल को पैदा किया, तो फिर तो पीपल से ज्यादा उसके पिता की पूजा होनी चाहिए। तो शास्त्र ये कहता है कि आप एक माध्यम बने, किसी का कोई पैदा हो गया आपके थ्रू। अब ये कोई तर्क थोड़े ही है कि मैं तेरा बाप हूं इसलिए तो मेरी बात सुन, मैं सुपीरियर। प्रेम में दूसरे को समझने का प्रयत्न है, मोह में अपने को आरोपित करने की वृत्ति कि इसलिए तो मेरा कहना मान, उसमें कोई तर्क की बात नहीं। और मोह से समृति विभ्रमा, समृति गई, जब समृति ही गई तो फिर कल्पना शक्ति काहे की रह गई, वो तो साथ में खत्म। देखो एक और बहुत बढ़िया बात गीता से ही हमें मिलती है कि मोह में समृति नष्ट हो जाती है, प्रेम में समृति की पुष्टि होती है, समृति। और गीता के अखीर में अर्जुन भगवान से कहते हैं नष्ट मोहा समृतिर्लभ्व। देखो कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही, वो कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया है, समृति जागृत हो गई है, त्वत् प्रसादात् मे अच्युता। हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, मेरे मोह खत्म हुआ और समृति की पुष्टि हो गई। प्रेम से समृति की पुष्टि होती है, मोह से समृति का नाश होता। जहां मोह से समृति का किसका नाश होगा, जिसमें मोह है, जिसके प्रति मोह है उसका तो कुछ नहीं नाश होगा। अगर मेरे में मोह है किसी के प्रति तो समृति मेरी नाश होगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिसके प्रति मेरा मोह है, वो तो वैसे का वैसे ही। और प्रेम अगर होगा तो मेरी समृद्धि भी पुष्ट होगी और उसकी समृद्धि भी और बढ़ेगी, ये प्रेम की विशेषता है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने ये बात बता दी कि उससे क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात समृति विभ्रम, उसी से समृति खत्म और समृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। समृति के विभ्रम होते ही बुद्धि का नाश हुआ, अर्थात स्मरण शक्ति भी गई, ग्रहण शक्ति भी गई, कल्पना शक्ति भी गई। जब ये तीनों ही शक्तियां गई तो फिर बाकी कुछ बचा ही नहीं, इसी को ही उन्होंने व्यक्ति का नाश माना कि उससे फिर सर्वनाश हो गए। तो सर्वनाश तक पहुंचे कहां से, बड़ी छोटी सी बात से कि किसी को अच्छा कह बैठे थे, किसी को अच्छा समझ बैठे थे, किसी को सुंदर समझ बैठे थे और फिर उसके प्रति कामना पैदा हुई, फिर हमने उसके लिए प्रयत्न किए, फिर उसके रास्ते में ये आया, फिर रास्ते में वो हुआ, फिर रास्ते में ऐसा हुआ, फिर ये। अब ये भी प्रश्न होता है कि फिर ये जब एक क्रम बना हुआ है तो सावधान कैसे रह सकते, इसके लिए ये जरूरी है कि जीवन में किसी न किसी नियम का कट्टरता से पालन करना। और उन नियमों में एक नियम यही है, जैसे हमारे त्रिकाल संध्या का एक नियम था कि कम से कम तीन बार तो भगवान को याद करना ही। जो साधक थे वो चार बार करते थे, आम आदमी के लिए तीन बार का था। चार बार ये होता था कि मध्य रात्रि को भी एक बार नाम ले लेते थे भगवान का, प्रातः दोपहर सायं और मध्य रात्रि, इसीलिए चारों पहरों में ये जो बनाए गए थे 24 घंटे में 6-6 घंटे के बाद सुमरण करना भगवान का। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति सोते समय ईश्वर का स्मरण करते हुए सो जाए, स्मरण का अर्थ है जो जो भी आपका मंत्र है, किसी का कोई गुरु मंत्र है तो ठीक है, नहीं है कोई गुरु मंत्र तो महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे करते सो जाओ, नहीं है तो गायत्री का जाप करते हुए सो जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते सो जाओ, और केवल ओम का चिंतन करते हुए सो जाओ। और सुबह उठते ही सबसे पहले फिर उसी का सुमरण करो। हमारे ऋषियों का ये कहना है और जिन्होंने ये किया है उनका अनुभव है कि अगर कोई भी व्यक्ति 40 दिन तक इस नियम का पालन कर ले तो वो बुराई की तरफ जा नहीं सकता, उसका जीवन मर्यादित हो जाता है। आप सोते समय भगवान का याद करते हुए कोई भी मंत्र जो भी आपके पास है, और आपके सबसे अच्छे मंत्र उपनिषदों के ये शांति पाठ, इनसे बढ़िया कोई और है नहीं। मां विद्विषा वही करो आप, या भद्रम करने भी वाला करो, या मेरी वाणी पवित्र बोले, मेरे कान अच्छा सुने, ऐसे ऐसे जो भी। लेकिन फिर भी सुबह उठकर और एक बार दोपहर को और फिर शाम को, दोपहर के लिए निश्चित रूप से एक समय हो कि मैंने इतने बजे जरूर एक बार ये मंत्र करना है। कोई भी समय आप ये रख लो कि 1 बजे या 12:10 पर करूंगा। बड़ी विचित्र बात है कि इसको करने में ही आपको कई दिन निकलेंगे। कभी वो टाइम पर भूल जाएंगे बात को, कभी फिर वो करेगा कि आज रह गया, कभी फिर कुछ करेंगे, और फिर सोते हुए याद करके सोएं और जागते हुए भी उसको दोहरा लें, ये तो साधना ही कंप्लीट होगी। क्योंकि सोते हुए याद ही नहीं रहता कि उसको करना था, कुछ और ही करते करते सो गए, और उठते ही कुछ और याद आ जाएगा कि वहां फोन करना था, वहां जाना था, ये करना। जब आप वो कर बैठेंगे फिर याद आएगा कि मुझे ये करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर आप उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि साधना तो यही है और साधना कुछ नहीं, साधना कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, जीवन को मर्यादित कर लेना, किसी एक नियम को अपनाकर जीवन में घुमा फिराकर अपनी वृत्तियों को एक बार जब हम मर्यादित कर लेते हैं तो फिर वो स्वतः चलती, फिर उसमें कोई उनको नहीं कोई रोक सकता। एक बार बस शुरू करने की बात, आप ऐसा ही समझ लो कि कोई पुरानी सी गाड़ी, बहुत पुराना मॉडल, और उसके सारे इंजन की जिन भी खराबी हो और गड्ढे में भी गिरी हुई हो, अब उसको चलाने के लिए तो उसमें पेट्रोल भी डालोगे, वो भी करोगे, धक्के भी लगाओगे, हो सकता है वो ट्रैक्टर से खींच के उसको बाहर लाना पड़े पहले, और GT रोड पर आके फिर वो चल पड़ेगी, फिर उसमें कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे ही हमारा मन जो है, जो इतने विषयों में घिरा हुआ है, रूप रस गंध स्पर्श के जो चक्कर में पड़ा हुआ है उस गड्ढे में से, उसको उसमें से निकाल कर, और फिर वो भी कोई आज का नहीं है मन, हम जितनी भी जितनी जितनी हमारी उम्र है बस उतना उतना ही समझ लो, कहने की बात है कि मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, वास्तविकता यह है कि उतनी चालाकी, उतनी बेईमानी, उतनी हेराफेरी के गुर मुझे ज्यादा आ गए, छोटा होता तो शायद मैं संभल जाता। तो इसलिए मैं मस्जिद तो बना दी, पल भर में इमाम की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पाती था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद बनाने में तो 2 मिनट लगते, अभी चंदा इकट्ठा करो हनुमान जी की फोटो इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन मन को पवित्र करने में वो बरसों बीत जाती, वो मुश्किल होता है। ये चिन्ह बनाना, मूर्तियां बनाना, वो करना, उनका वो कर देना, इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगती। तो बात यही है कि उस मन को करने के लिए ये जो मंत्र है या नाम है जिसको आप नाम कहते हो, यही वो एक साबुन है जिससे मन को धोया जा सकता है। तो सिंपल साधारण पांच बार अगर कोई राम राम कहने का भी नियम ले ले कि टाइम पर जरूर इतने सुबह इतने बजे, दोपहर को इतने बजे, शाम को इतने बजे, ऐसा भी कोई नहीं कर पाता, कितना आसान काम है। और फिर बड़ी बड़ी साधनाओं की तो बात ही छोड़ो कि हम वो करेंगे, और ये जो योग के चक्र के मूलाधार चक्र कहाँ है, अधिष्ठान चक्र कहाँ है, नाभि चक्र कहाँ है, वो कॉपी पे लिखते रहो सारी उम्र, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कि कितने ये शुभ इच्छा सुविचार ना तनुमानता असन शक्ति पदार्थ भावनी प्रियदा आऊ मा ओम की पांच मात्राएं, आठ मात्राएं, चार मात्राएं, हमारे शिव पुराण में ओम की 16 मात्राएं जो योगियों का है, और फिर नाग तक पहुंचे, उसमें समझाने में समझने में सब ठीक है, क्यों सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन लाभ कुछ नहीं है। लाभ तो केवल भगवान के नाम में, और वो अगर सचित बने, रोज का बन जाए, नियम पूर्वक अगर हम उस नाम को लेते हैं, दिन में अगर 3 बार भी लेते हैं तो बंध जाता है व्यक्ति, उसमें बुराइयों की तरफ चिंतन जाना कम हो जाता है। अगर बिल्कुल खत्म भी नहीं होगा तो कम से कम ही हो जाएगा, मरते हुए तो शांति से जाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि मरते हुए वासनाएं फिर पीछे यहाँ कहीं पड़ी रह जाएं। अगर 3 बार भी हम नाम लेना जान जाएं तो क्या पता है भगवान की कृपा से उन तीनों किसी समय में आखिरी दम हो हमारा। अगर वो भी नहीं है तो जो चिंतन इस समय चल रहा है उसकी तो फिर वो तो हम तो वहां तक पहुंचे हुए हैं, बुद्धि नाशा प्रणश्य थी, वो पहले वाली तो बात ही बहुत पहले की थी जो करनी थी हमें, हम तो अब इस आखिरी स्टेज पे खड़े। तो इसलिए आखिरी स्टेज पे भी सहारा वही है, आप ईश्वर के नाम को पैराशूट समझ लो कि हवाई जहाज से छलांग लगा देते हैं लोग, और उससे फिर भी कहीं ना कहीं धरती पर आके बच ही जाएंगे। अब फिर भी कहीं जंगल में जाके गिर गए तो बात दूसरी है, लेकिन बचने की संभावना काफी। ओम तत्सत्।